सेहत की बातें डॉक्टर से बातें, क्या करें क्या ना करें, रोगों से कैसे बचें, जानने के लिए सुनते रहें अर्पण रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी।
सभी श्रोता साथियों को संज्ञा
और अनुज का नमस्कार।
श्रोताओं, उम्र कोई भी हो, मजबूत हड्डियां स्वस्थ शरीर की जरूरत होती हैं। हमारी हड्डियां कैल्शियम के अलावा कई तरह के मिनरल्स से मिलकर बनी होती हैं। अनियमित जीवन शैली की वजह से या फिर बढ़ती उम्र में ये मिनरल्स खत्म होने लगते हैं, हड्डियां घिसने और कमजोर होने लगती हैं।
बुढ़ापे में तो हड्डियां कमजोर होती ही हैं, पर क्या जवानी या अधेड़ उम्र में हड्डियां कमजोर हो सकती हैं?
लगता तो यही है, क्योंकि आजकल हर उम्र के बच्चे बड़े घुटने, कमर, गर्दन, पीठ, हाथ, पैर व जोड़ों में दर्द की शिकायत करते हुए मिल ही जाते हैं।
इसलिए कार्यक्रम के लिए हम मिले 27 सालों से हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में अंचल के रोगियों की सेवा कर रहे डॉक्टर हेमंत चटर्जी से। कार्यक्रम में हम उनका स्वागत करते हैं।
डॉक्टर साहब, एक इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, तो शरीर में हड्डियों से जुड़े हुए मुख्य रोग कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में सबसे पहले आप हमको जानकारी दीजिए।
वैसे तो हड्डी के तो बहुत सारे रोग होते हैं, मगर जो मुख्यतः हम लोग देखते हैं अपने नॉर्मल ओपीडीज में, वो डेफिनेटली एक आर्थराइटिस एक बहुत बड़ा रोग है। जो हड्डी का विशेष रोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि आर्थराइटिस जोड़ों से संबंधित होता है, और हमारे जोड़ जो है हमको चलने लायक बनाते हैं, हमारी गतिशीलता के साथ जुड़े रहते हैं। दूसरा रोग, आजकल फ्रैक्चर को भी हम लोग रोग ही बोलते हैं, क्योंकि फ्रैक्चर ना केवल एक चोट से होने वाला सांघातिक अपघात है, बल्कि ये एक ऐसी चीज है जो रोग का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो एक बीमारी का रूप धारण कर लेता है।
तो अलर्ट हो जाएं। कमर या जोड़ों में दर्द, मामूली चोट लगने पर भी हड्डियों में फ्रैक्चर, रह रहकर न सहे जाने वाला दर्द, हड्डियों को दबाने पर मुलायम लगना और उनमें दर्द होना, ये सब हड्डियों की ऐसी परेशानियां हैं जिनसे हड्डियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं।
कुछ ऐसे रोग भी होते हैं जो आजकल बहुत ज्यादा हमारे लाइफ स्टाइल से संबंधित है, हमारी जो दिनचर्या है उससे संबंधित है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियों में जो कैल्शियम की कमी हो जाती है। पहले ये माना जाता था कि ऑस्टियोपोरोसिस एज के साथ होने वाला रोग है, मगर अब वो ऐसा नहीं रहा। हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जिसमें हम लोग किसी तरह की एक्सरसाइज नहीं करते, खाने पीने का ध्यान नहीं देते, बराबर सोते नहीं है, बराबर उठते नहीं है, उससे क्या होता है, हड्डियों में रक्त का संचार कम हो जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो जाती है।
भारत में हड्डियों से जुड़ी समस्या बहुत आम बात है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हड्डी, जोड़ और कमर का दर्द जीवन का अभिन्न अंग बनता जाता है।
आज हर 10 में से लगभग 4 स्त्रियों और 4 में से एक पुरुष को हड्डी से जुड़ी कोई ना कोई समस्या घेरे रहती है।
पर ध्यान रहे, हड्डियां रातों रात कमजोर नहीं होती, ये प्रक्रिया सालों साल चलती है।
डॉक्टरों का मानना है कि 15 से 25 वर्ष तक की उम्र में हड्डियों का मास यानी द्रव्यमान पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। ऐसे में बचपन और युवावस्था के समय का खान पान, पोषण, जीवन शैली और व्यायाम आगे चलकर हड्डियों की सेहत को निर्धारित करने वाले कारक बनते हैं।
एक आम आदमी यही सोचता है कि हड्डी यानी कैल्शियम, अगर कैल्शियम हमारे शरीर में कम जा रहा है तो हमको हड्डी की परेशानी हो रही है, या कहीं पे भी दर्द होता है तो लोग बिना डॉक्टर से पूछे भी अक्सर कैल्शियम खा लेते हैं। तो हड्डी में कैल्शियम के अलावा और किस चीज की कमी होती है, तब फिर किसी तरह के रोग हो सकते हैं?
हम कैल्शियम को चूने के रूप में देखते हैं, और हड्डी क्योंकि सफेद होती है तो हम सोचते हैं कि कैल्शियम ही केवल हड्डी बनाता है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हड्डी की संरचना में प्रोटीन करके जो चीज होती है, जो मिनरल जो चीज होता है और जो कैल्शियम होता है, तीनों का ही मिश्रण हड्डी को एक बराबर स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो नॉर्मली क्या है, कैल्शियम तो बेसिकली हमारे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि कैल्शियम हमारे शरीर में तभी अब्सॉर्ब होगा जब हमारे इंटेस्टाइन में विटामिन डी की मात्रा रहेगी।
अच्छा।
विटामिन डी एक ऐसा पदार्थ है जो कैल्शियम को अब्सॉर्ब करता है। भले आप कितना भी कैल्शियम खा रहे हैं, और अगर आपको एब्जॉर्प्टिव डिसऑर्डर है, मतलब पेट की आपको कोई तकलीफ है, तो आपको कैल्शियम की कमी हो जाएगी, क्योंकि जो कैल्शियम आप खा रहे हैं वो पच नहीं रहा है। दूसरी बात, विटामिन डी एक ऐसा पदार्थ है जो सामान्य रूप से सूर्य के प्रकाश से आता है। आजकल जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जिसमें लोग बाहर भी निकलते हैं तो कपड़ा बांध के निकलते हैं, धूप नहीं लगती शरीर में, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल लोग जो हैं, उन लोग अपने आप को सन में एक्सपोज नहीं करना चाहते, तो ऐसे जवान लोगों में भी कैल्शियम की कमी हो रही है विटामिन डी की कमी से।
यूं तो विटामिन डी के सेहत के लिए बहुत सारे फायदे हैं, पर कुछ खास हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं।
एक तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये आपके शरीर में हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है,
हमारे दिमाग के नर्वस सिस्टम के लिए भी ये लाभकारी है, और इसका मतलब है दिमागी विकास के लिए भी विटामिन डी बहुत महत्व रखता है।
ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत फायदेमंद है।
ये हमारे फेफड़ों की कार्यक्षमता में इजाफा करता है और उनकी क्षमता को भी बढ़ा देता है।
ये दिल की बीमारियों को भी होने से रोकता है।
कैल्शियम के स्तर को शरीर में संतुलन और हड्डियों की सेहत में विटामिन डी का महत्वपूर्ण योगदान देखा गया है।
तो जरूरी ये है कि विटामिन डी की मात्रा हमारे शरीर में अच्छे से पहुँचे, जिसके लिए सन एक्सपोजर बहुत जरूरी है। कैल्शियम और विटामिन डी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए तत्व हैं, तो कभी भी ये ना समझे कि केवल कैल्शियम खाने से कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी या हड्डियों में ताकत आ जाएगी। विटामिन डी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कैल्शियम।
और आपने कहा प्रोटीन और मिनरल्स, उनकी कमी के कारण भी हड्डियों के रोग होते हैं।
बहुत ज्यादा प्रोटीन्स की कमी के कारण हड्डियों के अंदर में जो रोग आता है उसको हम ऑस्टियोमलेशिया भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, हड्डियां लचीली हो जाती है, उसका नरम पदार्थ जो रहता है जो प्रोटीन से बनता है उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण भी। मगर ये प्रोटीन की कमी बेसिकली वो भी डाइटरी डेफिशिएंसी है, और ये बच्चों में ज्यादा होती है। तो जो हम लोग हड्डियों में कैल्शियम की कमी की बात करते हैं, उसके दो प्रकार हैं, एक है ऑस्टियोमलेशिया, दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है कि हड्डी का जो संरचना है उसमें लचीलापन आ जाता है, और ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डी के अंदर जाली बन जाती है, मतलब हड्डियों की संरचना कमजोर हो जाती है। तो दोनों का प्रकार अलग अलग है, दोनों को जानना बहुत जरूरी है, और उसके लिए फिर टेस्ट अवेलेबल है। एक जो बहुत ही कॉमन टेस्ट आजकल होता है, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट कहते हैं, BMD करके एक टेस्ट होता है। तो BMD टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम ये जानकारी ले सकते हैं कि मरीज के शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितनी है और उसका हम सही इलाज कर सकते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली आजकल जो हमारा मार्केटिंग प्रोपेगेंडा का दिन चल रहा है, उसमें कई हमारी मेडिकल कंपनी नया तरीके का BMD टेस्ट मशीन ला रही है, जो मैं बोलूंगा सही नहीं है। वो एक एक्लिस एक्सप्रेस मशीन है जिसमें मरीज को अपना AD लगाना पड़ता है और वो बता देता है कि आपके शरीर में कैल्शियम कितना है। बट हम ये जानते हैं कि वो मशीन जो है यूरोपियन स्टैंडर्ड से कैलिब्रेटेड है।
अच्छा।
कई जगह आप बिलासपुर शहर में भी देखेंगे कैंप लगाए जाते हैं जिसमें ये लिखा जाता है कि आपकी हड्डियों की जांच हो रही है करके। तो ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि ऐसे कैंप पे बिल्कुल भरोसा ना किया जाए। वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिससे केवल आपको ये पता चलेगा कि कैल्शियम की कमी है कि नहीं है, मगर उसका अगर आपको निदान करना है तो BMD जो टेस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट करते हैं। वो अभी यहाँ पे हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। सरकारी अस्पताल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़रूर एक मशीन है जिसमें BMD टेस्ट होता है, और ज़रूर हमारे मरीज उसके ऊपर निर्भर हो सकते हैं, और वो BMD टेस्ट के हिसाब से फिर ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया का ट्रीटमेंट किया जा सकता है।
आजकल हर डॉक्टर कह देता है कि बोन डेंसिटी की जांच करा लें, जिससे पता चल सके कि आपकी हड्डियां कमजोर तो नहीं हो रही।
हर मरीज को खून में विटामिन डी का लेवल जांच करने के लिए भी बोल दिया जाता है। तो हमने समझा ये विटामिन डी का चक्कर क्या है। बहुत सी बातें, बहुत सी गलतफहमियां, बहुत सी धंधे वाली बातें और बहुत सी सूचनाएं आपने जानी समझी।
ध्यान रखिएगा, डॉक्टर हेमंत चटर्जी की बताई इन बातों को और अपनी हड्डियों को स्वस्थ व सुरक्षित रखने का प्रयास कीजिएगा।
अब हम बात करेंगे संधिशोथ यानी आर्थराइटिस की, जिसका अर्थ ही होता है जोड़ों में दर्द। ये उन 170 जोड़ों की बीमारियों के संबंध में होती है जहां जोड़ों में दर्द, अकड़न या सूजन आ जाती है।
चलिए अब हम बात करते हैं आर्थराइटिस की। तो इस रोग में कैल्शियम का कितना महत्व होता है?
ऐसे सही बताएं तो आर्थराइटिस में कैल्शियम का कोई महत्व नहीं है। ये आर्थराइटिस का मतलब ही होता है जोड़ों के आसपास होने वाला दर्द को हम आर्थराइटिस बोलते हैं। डेफिनेटली ये हो सकता है कि अगर कैल्शियम होने से हड्डियां कमजोर हो गई हैं तो आपको आर्थराइटिस हो सकता है, बट जिनको आर्थराइटिस है उनको जरूरी नहीं कि कैल्शियम की कमी हो।
जोड़ों में दर्द हमेशा आर्थराइटिस नहीं होता, कई बार जोड़ों पर अधिक दबाव पड़ने या किसी अंदरूनी चोट के कारण भी ऐसे दर्द हो सकते हैं। तो फिर आप आर्थराइटिस के दर्द की पहचान किस तरह करेंगे?
हम आपको कुछ ऐसे लक्षण बता रहे हैं जो आर्थराइटिस में दिखते हैं, इससे आपको इस बीमारी की पहचान करने में आसानी होगी और आप डॉक्टर के पास आगे के उपचार के लिए समय से पहुँच पाएंगे।
जोड़ों में एक सप्ताह से अधिक तेज दर्द, जोड़ों में दर्द के साथ बुखार भी बना रहना, दर्द की दवाएं खाने से भी जोड़ों का दर्द ठीक न होना, जोड़ों में लगातार सूजन और अकड़न महसूस होना, उठने बैठने और रोजमर्रा के काम करने में तकलीफ होना।
अगर आपको ये सभी या इनमें से कुछ लक्षण दिखते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अर्थराइटिस का जल्दी पता चल जाने पर उसका उपचार आसान हो जाता है।
डॉक्टर साहब से अब जानते हैं अर्थराइटिस के प्रकारों के बारे में।
आर्थराइटिस भी कई प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से आर्थराइटिस हमने जो देखा है उसमें तीन मुख्य प्रकार हैं। पहला आर्थराइटिस होता है जिसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र के साथ होने वाला परिवर्तन है जिसमें हड्डियों के बीच में रहने वाला जो तरल पदार्थ है जिसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं उसमें चिकनाई की कमी आ जाती है और आर्थराइटिस होता है। दूसरा आर्थराइटिस है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसा आर्थराइटिस है जो यंग एजेस में होता है और ये एक बीमारी के रूप का आर्थराइटिस है जिसको सही रूप में जानना और उसकी इलाज करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या होता है जोड़ों में विकृतियां पैदा हो जाती हैं। तीसरा आर्थराइटिस होता है गाउटी आर्थराइटिस, गठिया बात, जो बेसिकली खान पान से संबंधित रहता है। जिन लोग प्रोटीन की मात्रा ज्यादा खाते हैं, जिन लोग नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको ये आर्थराइटिस होता है जिसको हम लोग गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं। इसमें सीरम यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो तीनों आर्थराइटिस डेफिनेटली आर्थराइटिस है मगर तीनों का इलाज एकदम डिफरेंट है और दवाइयां भी बिल्कुल अलग अलग है। तो मरीजों को ये जानकारी बहुत होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए कि आपको कौन सा आर्थराइटिस है और आपका क्या इलाज चल रहा है।
तो पहले हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं, उसका क्या लक्षण है, क्या इलाज है?
ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली एज के साथ होने वाला परिवर्तन है जिसमें मुख्य रूप से हमारे जो घुटने के जोड़ हैं, घुटने के जोड़ हमारे सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट वाले जोड़ हैं। घुटने का जोड़ जैसा कि आप जानते हैं फ्लैट जॉइंट होता है, सबसे ज्यादा वजन हमारा उसी में आता है। तो जब भी हम ये देखते हैं कि पेशेंट को घुटने का दर्द है तो हम लोग ये प्रिज्यूम करते हैं कि उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में बेसिकली होता ये है कि जोड़ों के अंदर की जो हमारी लचीला पदार्थ होता है जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है उसके अंदर का फ्लूइड सूख जाता है और आर्थराइटिस होने से जोड़ों की जो हड्डियां वो खुरदुरी हो जाती हैं। तो ऐसे जिन लोग मोटे लोग हैं, जिन लोग बहुत देर तक खड़े होने का काम करते हैं, जिनका उम्र ज़्यादा हो गया उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। जब भी हमको ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं हम उनका पहला काम करते हैं उनकी एज देखते हैं कि क्या है, जोड़ों के आसपास का जांच करके पता करते हैं और एक वेट बियरिंग एक्सरे करते हैं। वेट बियरिंग एक्सरे मतलब खड़े होके एक्सरे। खड़े होके एक्सरे करने से हमको पता चल जाता है कि जोड़ का आर्थराइटिस कितना है, जोड़ के अंदर गैप कम हुआ है कि नहीं है और उसके लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं आजकल। ये मैसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्थराइटिस के लिए पेन किलर में ही आपको भरोसा नहीं रखना है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए जो दवाइयाँ होती हैं उसको हम जॉइंट लुब्रिकेंट बोलते हैं। वो ऐसी दवाइयाँ हैं जो जोड़ के अंदर जो तरल पदार्थ सूख गया है उसको दोबारा बनाने की क्षमता रखती है। मगर फिर से हमको ये जानना जरूरी है कि हमको आर्थराइटिस को आपने किस अवस्था में पहचाना। अगर ग्रेड वन ऑस्टियोआर्थराइटिस एकदम प्रारंभिक अवस्था में हम आर्थराइटिस को पहचान जाते हैं तो हम लोग उसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। सेकेंड ग्रेड आर्थराइटिस जो होता है जिसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज या जोड़ की गद्दी बहुत ज़्यादा खराब हो गई है उसमें हम जॉइंट लुब्रिकेशन की दवाइयाँ देते हैं और आजकल जॉइंट में इंजेक्शन लगाने का भी एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आया है।
इंजेक्शन के नाम पर तो लोग यूं भी डरते हैं, फिर जोड़ों में या दर्द वाले स्थान पर इंजेक्शन लगने के नाम पर तो रूह कांप जाती है।
फिर ऐसे इंजेक्शन लगवाने के लिए लोग अक्सर मना भी करते हैं।
ये बात कितनी सही या गलत है आइए जाने डॉक्टर हेमंत चटर्जी से।
इंजेक्शन के बारे में कई बार हम लोग नॉर्मल जनता ये जानती है कि जोड़ में इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। ये बिल्कुल सही मैसेज था कुछ साल पहले तक जब हम जॉइंट में स्टीरॉइड इंजेक्शन लगाते थे। वो बिल्कुल खराब इंजेक्शन था, वो अच्छा इंजेक्शन नहीं था, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हुआ करते थे। आजकल जो जॉइंट में इंजेक्शन लगता है उसको जॉइंट लुब्रिकेंट इंजेक्शन बोलते हैं जो दो प्रकार से लगाया जाता है। एक तो एक इंजेक्शन होता है जो साल में केवल एक ही बार लगाना पड़ता है और दूसरा जो इंजेक्शन होता है उसको हर हफ्ते में एक बार लगाते हैं, 5 इंजेक्शन लगाना पड़ता है। वो एक अच्छा इंजेक्शन है और एक वो सिंथेटिकली प्रयोगशाला में बनाया गया जॉइंट फ्लूड है जिसको हम लोग जोड़ के अंदर डालते हैं तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है।
आपने ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ सिर्फ घुटने के जोड़ की बात की तो शरीर के और जोड़ों में भी इस प्रकार का आर्थराइटिस होता है?
नॉर्मली ऑस्टियोआर्थराइटिस में घुटने का जोड़ ज्यादा प्रभावित इसलिए होता है क्योंकि सबसे ज्यादा जोड़ में जो वजन हमारा पड़ता है वो हम घुटने के जोड़ में ही पड़ता है। कूल्हे का जोड़ जैसा कि आप जानते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो बॉल एंड सॉकेट में एक ही जगह तो प्रेशर आता नहीं है, बॉल का हमेशा सरफेस बदलता रहता है और मनुष्य जो होता है वो इरेक्ट पोस्चर का प्राणी है, खड़े होने वाला प्राणी है, तो खड़े होने पे सबसे ज्यादा वजन उसका घुटने में ही पड़ता है। दूसरा एक ऑस्टियोआर्थराइटिस और होता है जो चोट के बाद हो सकता है, जब चोट के बाद जोड़ के आसपास जो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, जोड़ की हड्डी चोट के कारण खुरदुरी हो जाती है। तो दोनों ही अलग अलग प्रकार के आर्थराइटिस है मगर ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली उम्र के साथ होने वाला आर्थराइटिस है और घुटने के जोड़ में ही ज्यादा होता है।
कई बार घुटने में पानी भर जाता है तो वो क्या इस आर्थराइटिस के कारण होता है या कोई और कारण?
बिल्कुल सही पूछा आपने, आर्थराइटिस के कारण ही पानी भरता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शरीर में पानी सूख जाता है, जो हमारा ज्वाइंट का लुब्रिकेशन कम हो जाता है, तो जोड़ के आसपास एक पदार्थ होता है जिसको हम साइनोवियम बोलते हैं, जिसका काम है जोड़ के अंदर पानी बनाना। मगर अपने प्रकृति ने जोड़ का पानी खराब कर दिया, तो रिएक्शन होने के कारण साइनोवियम रिएक्शन करता है, शरीर नहीं चाहता कि उसका पानी सूखे, इसलिए शरीर जो ज्यादा मात्रा में पानी बना देता है उसको हम लोग जोड़ का पानी भर जाना बोलते हैं। मगर क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में बना है और वो नेचुरल प्रोसेस में नहीं बना है, इसलिए वो दर्द पैदा करता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो पानी भरता है उसको हम लोग एफ्यूजन बोलते हैं। और फिर से एफ्यूजन के लिए भी मैसेज ये है कि पानी जब भी भर जाए तुरंत उसको निकालने की कोशिश ना करें। बहुत जगह गांव में या कुछ हमारे जो सहभागी डॉक्टर होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में पानी को तुरंत निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग का मैसेज ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर जोड़ में सूजन आई है और उसमें दर्द पैदा हो रहा है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से मिलना है और उसके लिए कुछ अलग दवाइयाँ होती उसको लेना है। पानी को सुई से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुई से अगर एक बार आप निकालेंगे बार बार पानी भरेगा और जोड़ में और ज्यादा खराबी आ जाएगी।
पानी को दवाओं से सुखाने की जरूरत है।
जी हाँ, वो ज्यादा जरूरी है।
अब हम दूसरे रूमेटिक अर्थराइटिस की तरफ बढ़ते हैं, उसके लक्षण क्या है, उसके इलाज क्या है?
बेसिकली ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है वो छोटे जोड़ों को इफेक्ट करने वाला आर्थराइटिस है और ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून डिसीज मतलब अपने आप होने वाला बीमारी है जो शरीर के अपने स्वभाव के कारण होता है। जब भी हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, यंग पेशेंट्स में होता है, महिलाओं को ज्यादा होता है। आर्थराइटिस को पहले अगर जल्दी से जल्दी पहचान ले रूमेटॉइड आर्थराइटिस को, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी दवाइयां हैं। तो पहचानने के लिए जब भी आपको जोड़ों के आसपास दर्द हो, सूजन हो, अब अगर आपकी उम्र कम है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर आपको एक टेस्ट करने के लिए बोलेंगे जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस टेस्ट बोलते हैं हम लोग, RA टेस्ट। वो बहुत ही आसान टेस्ट है जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि RA टेस्ट आपका पॉजिटिव है कि नहीं है। जिन लोगों को RA टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उनको एक दवाई दी जाती है जो फिर से पेन किलर नहीं है, वो DMRD कहलाती है, डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। ये ऐसी दवाइयां होती हैं जो अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की सही पहचान के बाद दी जाए तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ठीक कर सकती हैं। नॉर्मली हम लोगों को ये मानना है कि आर्थराइटिस ठीक नहीं होता है, ऐसा नहीं है। आर्थराइटिस ठीक भी होता है अगर उसकी पहचान सही हो और सही समय पर उसका इलाज चालू कर दें। तो जैसे DMRD जो दवाई की मैं आपको बात कर रहा हूँ, वो दवाइयां हमको तभी चालू करना है जब आपका RA टेस्ट पॉजिटिव हो।
ये बीमारी छोटे बच्चों में भी देखी जाती है?
वो अलग आर्थराइटिस है। जो बच्चों में देखी जाती है उसको हम लोग जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, JRA बोलते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ही प्रकार है। उसके लिए फिर हमको और टेस्ट कराने पड़ते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के स्पेसिफाइड टेस्ट होते हैं वो कराने पड़ते हैं। CRP करके एक हमारा टेस्ट होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन करके टेस्ट होता है, वो कराना पड़ता है। बट फिर से वही मैसेज रहेगा, आर्थराइटिस को आपको पहले से पहचानना है, पहचानने के बाद उसका सही इलाज अच्छी जगह पे कराना है, पढ़े लिखे डॉक्टरों से कराना है, तब वो ठीक हो सकता है।
आपने दो अर्थराइटिस के बारे में बता दी और तीसरे अर्थराइटिस का नाम आपने बताया था गाउटी अर्थराइटिस।
जी हाँ।
ये क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं?
वही गाउटी अर्थराइटिस जैसे मैंने आपको बताया, ये खान पान की गड़बड़ी से होने वाला अर्थराइटिस है जिसमें हमारे शरीर में यूरिक एसिड करके एक पदार्थ होता है वो बढ़ जाता है। यूरिक एसिड एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर में बढ़ने से उसका जॉइंट के प्रति एफिनिटी होती है, जॉइंट के में जाके वो सूजन पैदा कर देता है। और उसका पैथोग्नोमिक साइन या सबसे जो डायग्नोस्टिक साइन ये रहता है कि ये खासकर पंजे के जो अंगूठे का जो फर्स्ट जोड़ है उसको एफेक्ट करता है और उसमें चारों तरफ सूजन आ जाती है। एंकल ज्वाइंट को इफेक्ट करता है, उसमें सूजन आ जाती है और पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके जोड़ में फोड़ा जैसे हो गया है, फोड़ा हो गया, पक गया, थ्रॉबिंग पेन होता है। उस समय हम लोग एक यूरिक एसिड टेस्ट कराते हैं और यूरिक एसिड ज्यादा मात्रा में पाया गया तो हम जानते हैं गाउटी आर्थराइटिस है। बट गाउटी आर्थराइटिस में फिर से जानकारी ये जरूरी है कि वो खान पान का परहेज करना है, प्रोटीन जाति की चीजें कम खानी है, खासकर राहर दाल, चना दाल, मटर, बटर, मसूर, बरबट्टी, राजमा, छोले, चना, मूंगफली, ये सब चीजें नहीं खाना है। और जो मांसाहारी लोग हैं उनको रेड मीट नहीं खाना है जब तक आपका यूरिक एसिड 5 या उससे कम ना हो जाए, और उसके बाद आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। गाउटी आर्थराइटिस भी एक परहेज की बीमारी है, उसमें या तो आपको दवाई खानी पड़ेगी या खाने पीने में परहेज करना पड़ेगा। जब आप खाने पीने में परहेज में नहीं करेंगे फिर से वो बीमारी दोबारा हो जाएगी।
यूं तो लगभग 200 तरह के दर्दों को आर्थराइटिस से जोड़ा जाता है, पर कुछ नाम और सुनने में आते हैं जैसे सोराइटिक आर्थराइटिस।
सोराइटिक आर्थराइटिस चमड़ी के बीमारी होता है जिसका नाम है सोराइसिस, जिसमें चमड़ी में चकत्ते हो जाते हैं। तो सोराइसिस के साथ जो आर्थराइटिस होता है उसको हम लोग सोराइटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। वो एक अलग प्रकार का आर्थराइटिस होता है और वो केवल उन्हीं को होता है जिनको सोराइसिस की बीमारी है। तो उसमें हम लोग आर्थराइटिस को और सोराइसिस को दोनों को ट्रीट करना पड़ता है।
मैंने एक नाम और सुना था वायरल आर्थराइटिस, ये क्या होता है?
कई बार क्या होता है, जैसे वायरल फीवर होता है लोगों को, आर्थराइटिस मतलब बेसिकली जोड़ों के पास दर्द, हम लोग आर्थराइटिस नहीं बोलेंगे उसको, आर्थ्रेलजिया बोलेंगे। वायरल फीवर के साथ आप देखेंगे जोड़ों में दर्द की शिकायत होती है। अभी आपने एक नाम सुना होगा कि स्वाइन फ्लू फीवर जो हुआ था, फ्लू में फीवर तो आता ही था, साथ में मरीजों को जोड़ों के आसपास सूजन और दर्द की शिकायत हो जाती थी। तो कई ऐसे वायरस होते हैं जो फीवर के साथ साथ जोड़ों में भी दर्द पैदा करते हैं, उनको वायरल आर्थराइटिस बोलते हैं। ये टेम्पररी आर्थराइटिस है, जैसे आपका वायरल फीवर ठीक होगा, स्वाइन फ्लू आपका ठीक होगा, तो ये आर्थराइटिस भी ठीक हो जाते हैं, ये टेम्पररी रहते हैं केवल।
अच्छा, मतलब नाम उसके साथ सिर्फ
आर्थराइटिस जुड़ा, आर्थराइटिस जुड़ा हुआ है, मगर बेसिकली वो आर्थ्रेलजिया है।
अच्छा, ये जो आर्थराइटिस की बीमारी है, क्या ये अनुवांशिक रोग है?
रूमेटॉइड आर्थराइटिस अनुवांशिक रोग हो सकता है, जरूरी नहीं है। बहुत सारे रिसर्च में ये पाया गया है कि जिन माओं को आर्थराइटिस है उनकी बेटियों को आर्थराइटिस हो सकता है, पर बहुत सारे वैज्ञानिक जो आजकल खोज हुई है उसमें ये चीज भी प्रूफ हो गया कि ये कोई अनुवांशिक बीमारी नहीं कि आपके जेनेटिक्स में चल रही है, मगर हो सकता है कि कुछ लोगों को, जैसे मेरी माँ को अगर आर्थराइटिस है तो हो सकता है मेरी बहन को, खासकर लड़कों को तो कम होता है, लड़कियों को ये आर्थराइटिस हो सकता है।
आर्थराइटिस का इलाज क्या है और उसमें व्यायाम और योगा जैसी चीजों का कितना योगदान रहता है, मतलब उससे कुछ फायदा होता है?
आर्थराइटिस का इम्पोर्टेंस इसी में है कि उसका सही समय पे सही डॉक्टर के पास और सही दवाइयों से उसका इलाज किया जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आर्थराइटिस का प्रकार जानना बहुत जरूरी है, सही रकम से उसके इन्वेस्टिगेशन जरूरी हैं और सही दवाइयां चालू करना पड़ेगी। और क्योंकि ये आर्थराइटिस जोड़ों से संबंधित दर्द है तो व्यायाम का तो इसमें बहुत ज्यादा रोल रहता है, व्यायाम का, खान पान का, हमारी दिनचर्या का।
ठंड का मौसम आया या बदली छा गई तो अक्सर आर्थराइटिस के रोगियों की पीड़ा बढ़ जाती है, क्या ये सही है?
आर्थराइटिस ठंड के समय ज्यादा नहीं होता, जिनको आर्थराइटिस है वो अगर ठंडे में एक्सपोजर होगा तो उनको ज्यादा आर्थराइटिस होगा, उनको ज्यादा पेन होगा, ज्यादा उनको तकलीफ होगी। यूरोप में रहने वाले लोगों को, सबको किसी को आर्थराइटिस नहीं है, जिनको आर्थराइटिस है उनको अगर हम ठंडी चीजों से बचा सकें, खासकर कूलर एसी के सामने मत सोएं, अपने आप को बराबर प्रोटेक्ट करके चलें, गर्म कपड़े पहन के चलें, तो आर्थराइटिस की डेफिनेटली जो पीड़ा है उसको कम किया सकता है। भोजन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जैसा कि हम जानते हैं आर्थराइटिस के पेशेंट दर्द सह सह के और दवाइयाँ खा खा के बेचारे कमजोर हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को अगर हम अच्छा से संतुलित भोजन दें, अच्छी दिनचर्या रखें, प्रोटीन जाती की चीज़ें, हरी सब्जी हैं, दाल जाती की चीज़ें हैं, 200 ml मिल्क हम लोग रोज पीने बोलते हैं उनको, जिनको गाउटी नहीं है उनको, बाकी आर्थराइटिस के मरीजों को, तो डेफिनेटली हमारे जो पोषण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है शरीर की किसी भी बीमारी के लिए, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बीमारी के लिए, तो इनको तो हम छोड़ ही नहीं सकते।
जब आपके पास कोई पेशेंट आता है आर्थराइटिस का, आप उसको दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं तो साथ में आप उसको एक्सरसाइज योगा वगैरह भी बताते हैं कि क्या करना चाहिए?
बिल्कुल, बहुत ज्यादा हम लोग योगा और एक्सरसाइज में केंद्रित करते हैं अपने आप को, खासकर ऑस्टियोआर्थराइटिस जो ओल्ड एज में होता है या उम्र बढ़ने से होता है उसमें, तो आर्थराइटिस में तो योगा या फिजियोथेरेपी का बहुत ज्यादा रोल रहता है, जिसमें हम लोग पेशेंट को कसरतें तो सिखाते ही हैं, साथ में उनको फिजियोथेरेपिस्ट से जाके मिलने की सलाह देते हैं, जिसमें बड़े जोड़ों के लिए वैक्स बाथ थेरेपी या मोम की सिकाई का इलाज होता है, शॉर्ट वेव डायथर्मी का इलाज होता है जो एक तरह का हीट थेरेपी है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को हम लोग बोलते हैं आप लोग मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस किया कीजिए, मोबिलाइजेशन मतलब जोड़ों को चलाने की कसरत, आपके जितने जोड़ हैं सबको आप एवरी डे 15-20 मिनट तक चलाइए, ताकि क्या जोड़ों के आसपास खून का संचार ज्यादा हो और आपको आर्थराइटिस की पीड़ा कम।
चलते चलते एक बात और बताइए कि कुछ लोगों को उंगली चटकाने की आदत होती है, तो वो दर्द के कारण होती है या हवा भर जाती है, उससे नुकसान क्या होता है और क्या उससे आर्थराइटिस का कुछ संबंध है?
आर्थराइटिस से उसका कोई संबंध नहीं है, ये एक तरह का मनोविकार है समझिए आप। कई लोगों को उंगली चटकाने की आदत रहती है, तो हम लोग बोलते हैं कि जो भी हमारे सामने ऐसे लोग आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कृपया करके आप किसी तरह का साउंड प्रोड्यूस मत करें, क्योंकि डेफिनेटली आपको साउंड प्रोड्यूस करने के बाद आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है मगर आप जोड़ को आहत कर रहे हैं। जिनको ज्यादा क्लिकिंग साउंड प्रोड्यूस करने की आदत होती है उनके आर्टिकुलर कार्टिलेज या जोड़ों की जो नरम झिल्ली रहती है उसमें रेगुलर चोट लगती रहेगी और उनको आर्थराइटिस होना या जोड़ों का दर्द होना ज्यादा होगा बनिस्पत नॉर्मल लोगों से। तो जो जोड़ों को चटकाने की कटर पटर आवाज करते हैं लोग, इधर उधर से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम मना करते हैं कि ऐसा बिल्कुल मत करिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसके सिवाय आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जोड़ों को तनाव देने की कसरतें कर सकते हैं, जिसको आपको ज्यादा फायदा मिलेगा।
तो श्रोताओं, आज के अमृत धारा कार्यक्रम में आर्थराइटिस के बारे में आपने जाना समझा डॉक्टर हेमंत चटर्जी से,
अपने शरीर की हड्डियों को स्वस्थ रखने के बारे में भी जाना,
अधिक उम्र में होने वाले हड्डी के रोगों से बचने के लिए बच्चे और युवा भी अपनी लाइफस्टाइल का एनालिसिस कर लें कि उनकी दिनचर्या में जोड़ों के हिलने डुलने का प्रबंध है कि नहीं।
व्यायाम या योगा को जोड़ लें अभी से अपनी दिनचर्या में।
और अब अगले सप्ताह तक के लिए अनुमति दें। अनुज
और संज्ञा का नमस्कार।
सेहत की बातें डॉक्टर से बातें, क्या करें क्या ना करें, रोगों से कैसे बचें, जानने के लिए सुनते रहें अर्पण रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी।